जी आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, हमारी रिपोर्ट तैयार नहीं थी, लेकिन हम इसी मौजू को आगे बढ़ाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सदर फ्रांसवा ओलान कल सदर ओबामा से यहां वाशिंगटन में मिले। इस सिलसिले में इस वक्त बताया जा रहा है कि बैनुल अक्वामी तालुकात के माहिर प्रोफेसर फैज़ान हक लाइन पर हैं। प्रोफेसर फैज़ान, आपको खुश आमदेद।
जी बहुत शुक्रिया।
तो जैसे कि आपकी इल्म में है कि इस वक्त फ्रांसवा ओलान जर्मनी के चांसलर से मिलने जाएंगे, उसके बाद वो रूस के सदर से मिलेंगे, आप क्या देखते हैं कि किस तरह का इत्तेहाद बनने जा रहा है इस वक्त दाइश के ख़िलाफ़?
जी सबसे पहले तमाम सुनने वालों को बहुत सलाम दुआ और प्यार अल्लाह ताला उनको अपनी ईमान में रखे। इस वक्त जब से फ्रांस में पेरिस में वो हमले हुए हैं, उसकी वजह से हम देखते हैं कि यूरोप में तो तूफान मचा ही है, लेकिन फ्रांस पहली दफ़ा अमेरिका और दूसरे ममालिक जो हैं उनके साथ कोऑपरेट करने चला है। और हम देखेंगे कि एक इतिहादियों जो इतिहादी हैं, जो कि कोलिशन जिसको हम कहते हैं, जिन्होंने अफगानिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर इकट्ठे काम किया, उसमें जो बड़े बड़े प्लेयर्स होंगे वो अमरीका है, यूनाइटेड किंगडम है, जर्मनी है, फ्रांस है और कुछ और ममालिक भी। लेकिन इसमें जैसे आपने सुना होगा, कल प्रेसिडेंट ओबामा ने ये बात कही और फ्रांस के सदर ने कुछ रिजर्व अल्फाज में, मगर उन्होंने भी ये बात की कि जो रूस है यानी रशिया जो है वो और ईरान जो है, उनको बाकी दुनिया के साथ मिलकर चलना पड़ेगा। कि एक तरफ तो चलें दाइश वाले जो हैं वो तो पागल हैं ही, लेकिन उनके जो पागलपन की वजूहात हैं जिसकी वजह से वो लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं, वो हैं प्रेसिडेंट असद, बशारुल असद। और बशारुल असद जो हैं उनको बहरहाल जाना होगा। और ये आपको याद है, हमने पहले भी गुफ्तगू की थी कि उनके जाए बगैर, नया रजीम आए बगैर सीरिया में कोई पायदार अमन कायम नहीं हो सकता, चाहे रूस और कुछ और ममालिक इकट्ठे हो जाएं, क्योंकि ये सिलसिला जो है वो एक बहुत बड़ी वजह है उस खाना चंगी की, और उनको वहां से जाना होगा।
प्रोफेसर फैज़ान, आपकी इल्म में है कि इस वक्त जो फ्रांस के सदर हैं उन्होंने भी कहा कि वो ज़मीन पे कोई इस वक्त ट्रूप्स नहीं उतारेंगे, और अमेरिका भी नहीं चाहता है कि इराक और अफ़गानिस्तान के बाद वो कुछ ज़मीन पे अपनी फ़ौजें भेजे। ऐसे में आपने सुना होगा, यहाँ तज़ियाकारों का कहना है कि ये जंग नहीं जीती जा सकती जब तक कि ज़मीनी कोई कार्रवाई ना हो। इस सिलसिले में जो हम सुन रहे हैं वो ये कि बशारुल असद का होना ज़रूरी है ताकि उनके ज़रिए दाइश के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ी जाए। इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे?
जी देखिए, जो ज़मीन पर लड़ी जाने वाली लड़ाई है वो बाहर के किराए के फौजियों के साथ नहीं लड़ी जा सकती। पाकिस्तान ने भी दहशत गर्दों के खिलाफ जंग लड़ी है, जब तक खुद हमारी यानी पाकिस्तान की फौज मैदान में नहीं उतरी और डिटर्मिनेशन के साथ, कुव्वत इरादी के साथ, तो कामयाबियां जो हैं वो हासिल नहीं की जा सकी। तो जो ममालिक इस वक्त वहाँ पर इस दाइश की वजह से डायरेक्टली हिट होते हैं, उसमें कर्दिस्तान के लोग हैं और इराक के लोग हैं, सीरिया के लोग हैं, और उसके साथ सऊदी अरब है और ईरान है
जी।
और जब तक ये लोग खुद अपने फौजी और अपनी आर्मी और अपने रिसोर्सेज वसाइल को इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर अमरीकी वहाँ जाते हैं या फ्रांसीसी वहाँ जाते हैं या रशियन जाते हैं, वो कुछ अरसे के लिए जाएंगे और जब उनकी कीमत जो है वहाँ रहने की बहुत बढ़ जाएगी, वो वहाँ से चले जाएंगे
जी।
आखिर में ये जंग वहाँ के रहने वाले लोगों की जंग है और उन्हीं को ये लड़नी है
जी।
और मेरा ख्याल में इसमें पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरेबिया, ईरान, ये ममालिक एक बहुत कलीदी किरदार अदा कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये कि मेरे ख्याल में जो मैं सुन रहा हूँ खबरों में और मुख्तलिफ जगहों से, तो मुझे लग रहा है कि एक कंसेंसस बन रहा है कि जिसमें ये ममालिक जो हैं इनकी क्लोज कोऑर्डिनेशन होगी, और इनके साथ अगर हम मगरबी ममालिक के वसाइल को डाल दें और उनकी नो हाउ टेक्नोलॉजिकल हेल्प को डाल दें, तो मेरे ख्याल में कामयाबी के इम्कान बहुत बढ़ जाते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि फ्रांस के या अमरीका के फौजियों की तादाद वहाँ बढ़ाने से ये मसले में शायद वक्ती तौर पर कुछ फर्क पड़े, लेकिन अगर उसके जो दूरस्थ नतायज हैं वो अमेरिका के लिए भी, मगरबी ममालिक के लिए भी और वहाँ के लोगों के लिए भी अच्छे नहीं होंगे।
अच्छा, ये बताइए कि इस वक्त आप बरतानिया का क्या रद्द अमल देखते हैं? बरतानिया के अलावा यूरोपियन ममालिक जिनसे इमदाद मांगी जा रही है, सदर ओबामा इस वक्त कह रहे हैं कि उन्हें ज़्यादा फ़ौजें जो हैं वो देनी चाहिए, ज़्यादा जिसे कहते हैं खुफिया मालूमात देनी चाहिए, ज़्यादा पैसा इसमें डालना चाहिए। आप क्या देखते हैं कि यूरोप की तरफ से क्या रद्द अमल सामने आ रहा है इस
जी,
पर?
प्रेसिडेंट ओबामा जो ये काम कर रहे हैं, ये जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, लेकिन आपको आपको जैसे आपको याद होगा कि 9/11 के बाद जो यूरोपीय ममालिक थे वो उनके उन्होंने हमायत तो ज़रूर की थी अमेरिका की, और जब अमेरिका जंग करने के लिए निकला घर से अफगानिस्तान में और बाद में इराक में, तो बहुत कम ममालिक थे उनमें से जिन्होंने हमारे कदम के साथ कदम जमा के इस जंग में हिस्सा लिया। और ये बात जो है, क्योंकि अब यूरोप के अपने घर में आग लगी है तो उनको एहसास हुआ है कि ये कितना खतरनाक मामला है और उनको ये कितना संजीदगी से लेना चाहिए, और इसीलिए प्रेसिडेंट ओबामा ने कहा है कि ये जबानी कलामी जो है वो बात ज़्यादा दूर तक नहीं चलेगी। जो यूरोप के ममालिक हैं उनको खुद आगे बढ़ के अपने वसाइल शेयर करने होंगे, मालूमात शेयर करनी होगी, और अगर वो ये नहीं करेंगे तो, अगर आप देखिए ना, जो अमेरिका है वो 50 मुल्क हैं इकट्ठे बैठे हुए, इसलिए हम इसे यूनाइटेड स्टेट्स यानी कि मुतहदा रियासत है अमेरिका कहते हैं।
जी,
वहां पर यूरोपियन यूनियन जो है वो अभी, वो एक पंजाबी का मुहावरा है कि वो अभी तक अपने जूते ढूंढ रहे हैं, तो उनको जब तक ये कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे आपस में, एक ये नहीं कि वो अपने सरहदों को भूल जाएं, मगर जब तक वो कोऑर्डिनेशन नहीं करेंगे, यही वो गैप्स हैं जिसके अंदर दहशतगर्द तंजीमें जैसे कि अलकायदा है या आइसिस है वो घुस जाती हैं, और उनके लिए और उनको लिए उनके लिए आसानियां हो जाती हैं। और मेरे ख्याल में इस वक्त जो फ्रंट स्टेट्स हैं, जिनकी जिनको मैं जितना एम्फोसिस करूं उतना कम है, जो फ्रंट स्टेट्स हैं इस जंग में, तुर्की है, पाकिस्तान है और ईरान है और सऊदी अरेबिया है, जो फ्रंट स्टेट्स हैं इनको, इनकी मदद के बगैर, इनकी कोऑर्डिनेशन के बगैर, इनकी विलिंगनेस, मर्जी जो हो इनको, जिसको कहते हैं कि सियासी कुव्वत इरादी, पॉलिटिकल विल जो है, उसके बगैर ये मसला हल करना मगरबी या यूरोपीय ममालिक के बस में नहीं है।
जी, आप ये बताएं, आपके इल्म में है कि रूस का जो है वो एक जहाज़, उसको तुर्की ने मार गिराया। बताया जाता है आज जो ताज़ा इत्तलात हैं उसके मुताबिक उनका एक पायलट जो है वो तो बच गया, दूसरा जो है उसको मार दिया गया। ऐसे में आप क्या देखते हैं कि रूस और अमेरिका दोनों किस हद तक मुत्तहिद हो सकते हैं, क्योंकि नेटो में भी तो फूट पड़ गई है इसकी वजह से। तो जब फ्रांसवा ओलांद जाएंगे और रूस के सदर से मिलेंगे, आप कोई वसी इत्तेहाद देखते हैं दाइश के ख़िलाफ़?
जी, इसी वजह से जो आपके सामने मैंने अपने दलाइल पेश किए कि रूस जो है वो जब घर से निकला था इसको जंग को लड़ने के लिए, तो वो उनकी बड़ी बॉय जो है ना, वो जो है काउबॉय टाइप मेंटालिटी से कि हम शूट कर देंगे और हम लोगों को बता देंगे हम क्या कर रहे हैं, और उनका आपको मालूम है कि वो दहशतगर्दी का शिकार हो चुके हैं, उनका एक एयरलाइनर भी डाउन हुआ, और उसके बाद ये कि उनकी ये जो बढ़ी हुई खुद एतमादी थी उसने भी बहुत नुकसान पहुंचाया, क्योंकि उनका ख्याल था कि तुर्की जो है वो दब जाएगा, और तुर्कों के और रूस के दरमियान जो तारीखी लिहाज से हमेशा दुश्मनी रही है, ज़ार के ज़माने से लेकर और सल्तनत उस्मानिया के ज़माने से, और वहाँ पर आपस में उनका जिसको कहते हैं ना एतमाद की फ़जा बिल्कुल नहीं है, और तुर्की जो है वो ऐसे ही लेता है जैसे पाकिस्तान और इंडिया एक दूसरे के खिलाफ लेते हैं कि किसी ने वायलेशन कर दी हवा की तो हवाई हदूद की, तो बहुत सेंसिटिव हैं, और तुर्की ये नहीं चाहता कि उसका किसी भी तरह स्टेचर जो है दुनिया की नज़र में ऐसे हो कि हम कमज़ोर हैं या ये कि हम बर्दाश्त कर लेंगे कि हमारी सरहदों की खिलाफ वर्जी की जाए। तुर्की जो है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ किया कि तुर्की जो है वो इस्लामी ममालिक में उसका एक बहुत स्टेचर है, और वो स्टेचर यानी कि एक मजबूत मुल्क के हिसाब से कंप्रोमाइज़ करने पर तैयार नहीं है, और उनकी ये रिस्पेक्ट अगर नहीं देंगे उनको, चाहे वो रूस हो या कोई और हो, तो इसी मसले का वो हल नहीं निकल सकता। ये जो 4 ममालिक हैं इनको बहरहाल किसी तरह मेज़ पर आना पड़ेगा और बात करके आगे बात पड़ेगी, और मेरी मुझे उम्मीद है कि जहां फ्रांस के सदर रूस और अमेरिका गए हैं वो कोशिश करके इस्तांबुल, तेहरान और रियाज भी जाएं और इस्लामाबाद, ताकि इन ममालिक से मिलके वो एक काम कर सक ये काम हो सके। क्योंकि दाइश जो है सबसे बड़ा खतरा उसका जो है वो वहाँ पर है कि लोगों को है, जैसे हम जानते हैं कि उन्होंने कई शहरों में जाकर कत्लेआम किया है, उन्होंने कई शहरियों को मारा है।
जी
उनके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो ये जंग को अपनी जंग समझें, फ्रांस और अमेरिका की जंग मत समझें।
अच्छा जी, आप हमारे साथ रहें। इस दौरान हमें बाज़ लोगों ने कॉल भी किया है, उनके सवालात भी हम सुनते हैं। इस दौरान हमें कॉल किया है मियाँ वाली से मुरीद ख़ान ने, कोहाट से ख़ान अकबर आफरीदी ने। इस वक्त एक आईडी ब्रेक लेते हैं।
व्हाट्स अप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, जानिए facebook.com/voaurdu या twitter.com/urduvoa। हमसे राब्ता कीजिए urduvoa.com पर। व्हाट्स अप पाकिस्तान, क्या सीन है पाकिस्तान, urduvoa.com।
जी, आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम बात कर रहे हैं फ्रांस के सदर फ्रांसवा ओलांद की सदर ओबामा से वाशिंगटन में मुलाकात के बाद के फ़ैसलों के बारे में। इस वक्त हमारे साथ बफ़लो स्टेट यूनिवर्सिटी में बैनुल अक्वामी ताल्लुकात के माहिर प्रोफेसर फैज़ान हक हैं, और अगर कोई सवाल करना है तो उनसे कीजिए। मियांवाली चलते हैं जहाँ से मुरीद ख़ान कुछ कहना चाहते हैं। जी जनाब, कहिए मुरीद खान।
कर रहा हूँ, हेलो दोस्त, क्या याद कर रहा हूँ। मेरी मेहमान से गुजारिश है कि ये जो फ्रांस के सदर ने कहा है कि हम बदला लेंगे, तो वो किससे बदला लेंगे? और जब तक कुएं से कुत्ता नहीं निकालेंगे तो कुआं कैसे पाक होगा? मसला कश्मीर, मसला फलस्तीन, और एक आदमी कचरे के ढेर पर खड़ा रिजक तलाश कर रहा है और एक सोने के ढेर पर खड़ा है, तो वो कैसे अमन होगा? गोले बारूद पर खरबों डॉलर खर्च करने के बजाय भूख और तालीम पर खर्च क्यों नहीं किया जाता?
शुक्रिया आपके कॉल करने का। कोहाट से हमें कॉल किया है खान अकबर आफरीदी ने। जी जनाब, कहिए।
जी अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम।
फ्रांस का वाकया वाकई यकीनन काबिल नफरत है, लेकिन अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने CIA की झूठी रिपोर्टों पर जिस तरह की से इराक और अफगानिस्तान को कंधा बनाया हुआ है, और इस जुर्म में मुलवस जो मुजरिम है अभी तक वो इंसाफ के कटारे में नहीं क्या कर दिए गए हैं, जिससे आज भी वही दाइश पैदा हो रहे हैं और अलकायदा पैदा हो रहे हैं और बेगुनाह लोगों का खून बह रहा है। फैजान साहब से मेरा एक ही क्वेश्चन है।
जी जी।
टोनी ब्लेयर के इराकी अवाम और इंसानियत से माफी मांगने पर, खुद को मुजरिम कहने पर, क्या अमेरिका और यूरोपीय ममालिक का जमीर जाग चुका है, या उनकी मुजरमान हरकतों से मजीद दाइश और अलकायदा पैदा होंगे?
अच्छा, शुक्रिया 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 आपके कॉल करने का। प्रोफेसर फैजान, आपके इल्म में है कि यहाँ अमेरिका के अंदर भी ये सोच पाई जाती है कि इराक में जाना गलती थी। आप क्या समझते हैं, इराक का जो वाकया हुआ वो किस हद तक दाइश को पैदा करने में जिम्मेदारी अदा करता है?
जी, अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो हमें ये पता चलेगा कि दाइश की जो पैदाइश है उसमें ये जो पॉलिसीज थी इराक पर हमला करने की, और सदाम हुसैन का रजीम जो है उसको उसको ख़त्म करने की, उन्होंने एक पार्टिसिपेशन हुई है उनकी, और वो बहरहाल कुछ जिम्मेदारी जो है वो मगरबी ममालिक की भी है जिसमें अमरीका भी शामिल है, और वहाँ के लोगों जिस मुश्किल से गुजरे हैं और जिस हालात से गुजरे हैं वो भी एक इंतहाई तकलीफ दह बात है। और जैसे आपके पहले जो कॉलर जो थे उन्होंने ये कहा कि फ्रांस किससे बदला लेगा, फ्रांस वाले जो हैं वो बहरहाल आइसिस से ही बदला लेंगे, इसलिए कि आइसिस के खिलाफ जब तक दो महाज पे लड़ना है, एक तो जाहिर है महाज जो उन्होंने खोला है वायलेंस का उस पर लड़ना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ जो आइडियोलॉजिकल यानी कि नजरियाती महाज है उसकी तरफ तवज्जो देनी बहुत ज़रूरी है। और उस सिलसिले में इसीलिए जो कोलिशन है इन ममालिक का, जिनको मैं फ्रंट स्टेट्स का नाम देता हूँ, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो आपस में इनके साथ नजरियाती तौर पर जंग करें, जिसमें एक पार्टी वो कर्द्स की है और कर्दिस्तान का ज्यादातर इलाका जो है वो कुर्दों ने आज़ाद करवा लिया है आइसिस से, लेकिन इससे आगे उनकी वो उनकी पहुंच से बाहर हैं। दूसरी तरफ इराक में जो इराक की गवर्नमेंट है उनको कुछ अकल के नाखून लेने पड़ेंगे, क्योंकि और उनकी जो कलीद है वो तेहरान में है यानी कि ईरान के पास है। इसी तरह जो तुर्की है, तुर्की की मदद के बगैर और सऊदी अरब की मदद के बगैर आइसिस को ख़त्म नहीं किया जा सकता और उनको टेबल पे लाना पड़ेगा। और नज़रियाती लिहाज से जो मैं बात करना चाह रहा हूँ वो ये है कि आइसिस ने जो नाम अपना रखा है वो उस सोच के मुताबिक है कि आखिरी जो जंग होगी जो जिसके बारे में हम कहते हैं कि हज़रत ईसा की और हज़रत ईसा और इमाम मेहदी एक तरफ होंगे और दज्जाल एक तरफ होगा, ये वो उस माइंडसेट से वो लड़ रहे हैं। और इस माइंडसेट को चैलेंज करना नज़रियाती लिहाज से बहुत ज़रूरी है, और अगर ये हम चैलेंज नहीं कर पाते तो जो मशरिक़ वुस्ता जो है उसको समझें कि वहाँ पर ऐसी आग लगेगी जो कि सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगी। और ये अभी भी मुमकिन है कि हम नज़रियाती तौर पर इसके साथ कुछ कर सकें। अगर हम तारीख में पीछे मुड़कर देखते हैं तो ऐसा ही वक्त उस वक्त आया था कि एक तरफ तो क्रूसेडर्स थे वहाँ पर मशरिक़ वुस्ता में, दूसरी तरफ से मंगोल्स जो थे उन्होंने हमला कर दिया था और मैदान जालूत में थे जो मदद जो जंग आखिरी फैसला कुन जंग हुई थी। और उस वक्त भी लोगों का ये ख्याल था कि अब ज़माना ख़त्म होने वाला है, ये आखिरी जंग है। और उस वक्त भी बहुत से उलमा आगे आए थे और उन्होंने इस बात को बताया था कि ये नज़रियाती तौर पे उन्होंने ये बात कही कि ये वो वक्त नहीं है। इसी तरह इस वक्त हमारे यहाँ नज़रियाती जंग के लिए कोई आवाज़ नहीं उठ रही, ये एक ऐसा वैक्यूम, ख़तरनाक वैक्यूम पैदा हो रहा है जिसका फ़ायदा आइसिस और अलकायदा के लोगों को हो रहा है। और इसमें हमें नज़रियाती तौर पर इन हुकूमतों को आगे बढ़ना पड़ेगा और इनको आवाज़ निकालनी पड़ेगी ताकि हम उन कम से कम नौजवानों का रास्ता रोक सकें ज़हनी लिहाज से जो कि सड्यूस होते हैं उनके प्रोपेगेंडे से।
बहुत शुक्रिया। इस मोड़ पे हम शुक्रिया अदा करते हैं प्रोफेसर फैज़ान हक का जो बफ़लो स्टेट यूनिवर्सिटी में बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के माहिर हैं और प्रोफेसर हैं। आपकी शिरकत का शुक्रिया और हमारी तरफ से खुदा हाफिज़। हम अपने अगले मौजू की तरफ आते हैं और जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय कश्मीर में एक हमला हुआ है जिसकी ज़िम्मेदारी जैश मोहम्मद ने ली है। इस सिलसिले में इस वक्त बताया जा रहा है कि हमारे साथ श्रीनगर से सियासी तज़्ज़ियाकार नूर अहमद बाबा हैं, जबकि हमें ज्वाइन किया है खालिद फारूकी ने जो इस वक्त यूरोप में हैं। आप दोनों साहिबान हमारे साथ रहें। सबसे पहले हम इस सिलसिले में आप लोगों को एक रिपोर्ट सुनाते हैं, पेश कर रहे हैं यूसुफ जमील।
तीन अस्करियत पसंदों पर मुश्तमिल फिदायीन की एक जमीयत ने बुध को अलल सबा दारुल हुकूमत श्रीनगर से तकरीबन 150 किलोमीटर शुमाल मगरिब में वाके भारतीय फौज के एक बटालियन हेडक्वार्टर पर अचानक धावा बोला। इत्तलात के मुताबिक कंट्रोल लाइन के करीब वाके टंगदार इलाके में कायम फौजी कैंप पर अकब से हमला किया गया और इसके लिए हल्के हथियारों के साथ साथ बम भी इस्तेमाल किए गए। बाज इत्तलात के मुताबिक अस्करियत पसंद गहरी धुंध और कम रोशनी का फायदा उठाते हुए कैंप के अंदर दाखिल होने में कामयाब हो गए, जिसके बाद उन्होंने वहां खड़ी कई फौजी गाड़ियों और चंद बैरकों पर ग्रेनेड दागकर उन्हें शदीद नुकसान पहुंचाया। इस दौरान कैंप के अंदर मौजूद एक तेल डिपो में आग लग गई। हमलावरों ने कैंप के जनरेटर यूनिट को भी निशाना बनाया, जिसके नतीजे में एक मकामी शहरी जो वहां ऑपरेटर के तौर पर काम कर रहा था हलाक हुआ। इस मौके पर कैंप में मौजूद तकरीबन 80 फौजी अफसरों और जवानों में खलबली मच गई और उन्हें कैंप अहाते के मुख्तलिफ अतराफ में मोर्चा संभाल कर हमलावरों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई का आगाज किया। इस दौरान इलाके में हेलीकॉप्टरों की मदद से फौजी कमांडोज उतारे गए और फिर तरफैन के दरमियान शदीद झड़प तीन अस्करियत पसंदों के मारे जाने पर खत्म हुई। झड़प के दौरान भारतीय फौज का एक कर्नल और एक जूनियर कमीशन ऑफिसर JCO शदीद तौर पर जख्मी हो गए। इब्तदाई इत्तला'आत में JCO के हलाक होने की खबर दी गई थी, ताहम फौजी अहदेदारों का कहना है कि उसे झड़प खत्म होने के बाद कैंप के अंदर शदीद जख्मी और बेहोशी की हालत में पाया गया और अब वो एक फौजी अस्पताल में जेर इलाज है। عسکری تنظیم جیش محمد نے حملہ کرنے کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے دعویٰ کیا ہے کہ اس میں نہ صرف کیمپ کو شدید نقصان پہنچایا گیا بلکہ بھارتی فوج کو بھاری جانی نقصان بھی اٹھانا پڑا ہے۔ یہ حملہ ایک ایسے وقت ہوا ہے جب بھارتی کشمیر کے ضلع کپوارہ کے وسیع جنگلات میں عسکریت پسندوں کو ڈھونڈ نکالنے کے لیے بڑے پیمانے پر فوجی کارروائی گزشتہ 3 ہفتوں سے جاری ہے۔ اس کارروائی کے دوران اب تک فوج کا ایک کرنل اور ایک عسکریت پسند مارے جا چکے ہیں۔ دنی اسنا بدھ کو بھارتی کشمیر کے بدروا قصبے میں دائیں بازو کی ہندو جماعتوں کے کارکنوں نے بھارتی کشمیر کی اسمبلی کے آزاد ممبر اور علاقائی جماعت عوامی اتحاد پارٹی کے سربراہ انجینئر عبد الرشید پر اس وقت حملہ کیا جب وہ ایک جلسے عام سے خطاب کرنے کے بعد قریبی شہر ڈوڑا کی طرف جا رہے تھے۔ حملہ آوروں نے انجینئر رشید کی کار پر پتھر برسائے اور کالا رنگ پھینکا۔ اس واقعے میں انہیں چوٹیں آئیں۔ انجینئر رشید نے گزشتہ ماہ سرینگر میں ایک بیف پارٹی کا اہتمام کیا تھا جس کے بعد ان پر صوبائی اسمبلی کے اندر حکمران بھارتیہ جنتا پارٹی کے ممبروں نے حملہ کیا تھا۔ ان پر ہندو انتہا پسندوں نے نئی دہلی کے پریس کلب کے اندر بھی حملہ کیا تھا جس کے دوران ان پر کالا رنگ اور موبائل آئل پھینکا گیا۔ انجینئر رشید پر بدھ کو کیے گئے حملے کے علاقے میں مسلمانوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا اور حملہ آوروں کو گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
جی ہم سری نگر چلتے ہیں جہاں سے نور احمد بابا لائن پر ہیں۔ پروفیسر نور احمد، آپ کو خوش آمدید۔ یہ بتائیے، یہ جہش محمد کا یہ جو واقعہ ہے اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ جنگجو اپنے طور پہ کام کر رہے ہیں یا سری نگر میں کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کے پیچھے کسی ریاست کا ہاتھ ہے؟
دیکھیے، یہ کوئی اکیلا واقعہ نہیں ہوا، پچھلے کئی مہینوں سے یہاں پر دہشت کے کئی واقعات ہوئے ہیں اور کئی جگہ اب نارتھ ساؤتھ اور ابھی کپوارہ کے علاقے میں یہ کئی ملٹنٹ واقعات ہو رہے ہیں۔ کئی دنوں سے پچھلے کئی بار کئی جگہ ایسے حملے ہو گئے، لیکن یہ ذرا زیادہ شدت کا ہے۔ یہ کوئی نئی بات کشمیر میں نہیں، یہ کہ جب سے وہ ٹینشن بڑھ رہے ہیں اور جب سے یہاں کی ایک مایوسی کا ماحول بڑھ رہا ہے اور سرحدوں پر تناؤ کا ماحول بنا ہوا ہے، تب سے کئی قسم کے ایمرجنسی کے واقعات ہو رہے ہیں اور ان میں شدت آ رہی ہے۔ تو اس کا کیا، اس میں باہر کے بھی ہوتے ہیں، شاید زیادہ لوکل ہوتے ہیں۔ کل حزب المجاہدین کے کئی ملٹنٹ مارے گئے تو وہ لوکل ہی تھے۔ اس طرح لوکل کا باہر اب اس کا امتیاز کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ تو میرے خیال میں باہر سے کم لوکل زیادہ ہوتے ہیں آج کل جٹوں میں، لیکن کپوارہ میں کیا ہو رہا ہے ابھی تک عام لوگوں کو اس وقت کے بارے میں کوئی زیادہ علم نہیں ہے۔
اچھا جی، ہمارے ساتھ اس وقت خالد فاروقی ہیں جو یورپ میں ہوتے ہیں۔ خالد فاروقی، آپ کو بھی خوش آمدید۔ خالد فاروقی
جی،
تو یہ بتائیے اس وقت جو کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ خاص طور پہ بھارت اور پاکستان کے بیچ افغانستان پر جو ہے وہ ایک کشمکش کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں بھی کوئی پراکسی وار جو ہے، ایک جنگ جو ہے وہ لڑی جا رہی ہے۔ آپ کیا دیکھ رہے ہیں اس وقت پاکستان اور بھارت کے بیچ میں یہ کشیدگی میں کیوں کر اضافہ ہو رہا ہے؟
دیکھیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ تو مودی ایڈمنسٹریشن ہے ہندوستان میں، جس نے ایک اپریول وہاں پیدا کیا ہوا ہے۔ پاکستان کے انٹرسٹ میں ڈیفینیٹلی پاکستان یہ دیکھنا چاہتا ہے کابل میں اس کے لیے کوئی ہاسٹائل ایڈمنسٹریشن نہ ہو، اور یہ ہر ایک نیبرنگ کنٹری یہ چاہتا ہے کہ اگر اس کے پڑوسی ملک میں ان کی دوست حکومت نہیں ہے تو کم از کم دشمن حکومت بھی نہ ہو۔ تو افغانستان کا تو یہ ایک پہلو ہے پاکستان کے نقطہ نظر سے، لیکن اگر ہندوستان میں ہونے والی جو تبدیلی آئی مودی ایڈمنسٹریشن کے بعد، اور اس کے بعد جس قسم کے اقدامات وہاں ہو رہے ہیں، یہ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے بلکہ ایک انتہا پسندی کی ایک پوری لہر ہے ہندوستان میں، اور اسی انتہا پسندی کی لہر کے نتیجے میں وہاں پر ایک بلڈ اپ اینٹی پاکستان، پورا ماحول بلڈ اپ ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ وہاں کے معروف اداکار عامر خان کے ساتھ جو کچھ ہوا، صرف یہ لفظ کہہ دینے پر کہ وہ ہندوستان کو ان کی اہلیہ جو محفوظ ملک خیال نہیں کرتی اس وقت, اور وہ یہاں سے جانے کے متعلق سوچ رہی ہیں. تو اس پر جو طوفان برپا ہوا, پھر پاکستان کرکٹ ڈپلومیسی جو چل رہی ہے, ہندوستان اور پاکستان کے درمیان جو کرکٹ کے مسائل چل رہے ہیں, تو یہ ریفلیکشن ہے اس پالیسی کا جو ہندوستان نے اس وقت اڈاپٹ کی ہوئی ہے. یقیناً پروکسیز ہیں افغانستان میں, یہ انڈینائیبل ہے. پاکستان کا اتنا طویل عرصہ افغانستان میں جو ہے وہ رہا ہے, اور افغانستان میں اس کے پروکسی بھی موجود ہیں, اس کو بھی ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. لیکن اس وقت پاکستان اپنے داخلی مسائل پر زیادہ توجہ دینا چاہتا ہے, اور یہ چاہتا ہے کہ اس کے بارڈروں پر کم از کم خاموشی رہے. لیکن صورتحال جس طرح ہندوستان میں الیکشن کی تبدیلی کے بعد رونما ہوئی ہے, تو وہ ہندوستانی حکومت یہ سمجھتی ہے, موجودہ حکومت, کہ یہی وہ موقع ہے جب پاکستان کو زیادہ سے زیادہ بین الاقوامی سطح پہ آئسولیٹ کیا جا سکتا ہے اور ان سے نقصان پہنچایا جا سکتا ہے. تو وہ ہر ایک حربہ استعمال کر رہے ہیں. یہ نئی پروکسی وار تو افغانستان میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان نئی ہے ہی نہیں.
جی جی بالکل. پروفیسر نور احمد, آپ بتائیے, آپ جانتے ہیں کہ امریکی جو افواج ہے وہ باہر کیف اگلے سال تو رہے گی افغانستان میں, لیکن اس کے بعد کا جو سال آئے گا 2017, تو توقع کی جا رہی ہے کہ فوجوں کا انخلا ہوگا وہاں سے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیش نظر اس وقت پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے؟
مجھے لگتا ہے اس میں لوکل فیکٹر زیادہ ہے.
اچھا,
کشمیر میں جو پرابلم ہے وہ لوکل زیادہ ہے, باہر سے کم ہے. کہ کشمیر جو بیسیکلی جو ماحول یہ نو امیدی کا بن رہا ہے, اور پیس سے جو کمپلیٹلی آف ہو گیا ہے, اور سرحدوں پہ جو تناؤ ہے اس کی وجہ سے زیادہ پرابلم ہو رہی ہے یہاں پہ. جہاں تک افغانستان کا تعلق ہے وہ تو ایک پراکسی تو ہو رہی ہے دونوں طرف سے. افغانستان مجھے نہیں لگتا افغانستان کی وجہ سے کشمیر کا کوئی زیادہ امپیکٹ ہونے والا ہے. کشمیر کا مسئلہ زیادہ اندرونی ہے, اور اندرونی فیکٹر کی وجہ سے یہاں پر آج کل ایک نا امیدی کا ماحول پیدا ہوا. اس نا امیدی کی وجہ سے یہاں پر ایک نئے قسم کی ایک نئی سی ملٹنسی کی لہر لگتی ہے, ابھر رہی ہے. لیکن وہ کتنی وائڈ اسپریڈ ہے وہ بہت زیادہ نہیں ہوگی, لیکن کچھ ملٹنٹ واقعات اب آئے دن ہوتے رہتے ہیں. تو یہ اس کا, اور مجھے نہیں لگتا افغانستان کا کوئی ڈائریکٹ تعلق ہے. اس کا تعلق بنیادی طور پر انڈیا اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں, اور جو جس طرح کی حکومت دہلی میں ہے, اور اس کا جو ایک انٹالرنس ہے سواجہ ہو رہا ہے, اور کشمیر نے بھی اس کی تھوڑا ایلینیشن کو پش کیا ہے. اور خاص کر جو کشمیر کی صورتحال ہے اس میں اقتصادی اور پولیٹیکلی ایک کافی زیادہ ایلینیشن کا ماحول بلڈ اپ ہو رہا ہے, اور نا امیدی کا ماحول بلڈ اپ ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے یہاں کافی پولیٹیکلی لوگ نوائیوں سے لگ رہے ہیں. یہ ایسا ماحول ہے جس میں اس قسم کے ایلیمنٹس پنپ جاتے ہیں, تو اور یہ ٹینشن جو ہے دو ملکوں کے درمیان, اس کا میرے خیال میں بنیادی وجہ یہ ہے جو پیس پروسیس پوری طرح ٹھپ ہے کئی سال سے, اور اب کوئی امید ہی نہیں لگ رہی ہے کہ اس کو ریوائیو کیا جائے. ایک نا امیدی بلڈ اپ ہو رہی ہے کشمیر میں, اقتصادی صورتحال بھی خراب ہے, جوانوں کے جابس نہیں ہے, تو یہ ایسا ماحول اور نا امیدی کا مر رہا ہے.
دونوں ملکوں کو نقصان ہو رہا ہے اس کی وجہ سے. بالکل صحیح ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ مقامی وجوہات ہیں اس موڑ پہ.
کشمیر کے بارے میں تو مقامی وجوہات زیادہ ہے.
اچھا, بہت شکریہ.
جب میں مقامی کہتا ہوں اس کا مطلب یہ سب کانٹیننٹل فیکٹر, انٹرنل ڈائمینشن, تو انڈیا پاک لیول پر بھی جو ٹینشن چل رہا ہے اس کا امپیکٹ بھی کشمیر میں ہو رہا ہے.
اچھا, بہت شکریہ. یہ تھے پروفیسر نور احمد بابا جو کہ سری نگر میں ہوتے ہیں, اور ان کے ساتھ تھے برسلز سے خالد فاروقی جو سینئر صحافی اور سیاسی تجزیہ کار ہیں. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا, اور ہماری طرف سے خدا حافظ. اس کے بعد ایک بریک لیتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, جانیے facebook.com/VOA Urdu یا twitter.com/UrduVOA. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان, urduvoa.com.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. بریکنگ نیوز, ٹاپ اسٹوری, ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, मैं हूं ताबिंदा ने।
जी आप वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से जहां रंग सुन रहे हैं और देख रहे हैं, और हम अपने तीसरे मौजू की तरफ आते हैं। मौजू है पाकिस्तान, लिहाजा अगर आप लोग फ़ोन करना चाहें तो यकीनन इसमें शामिल हो सकते हैं। इस वक्त मौजू ये है कि आज यानी नवंबर की 25 तारीख को पाकिस्तान भर में एक मुहिम शुरू की जा रही है जो ख़वातीन के ख़िलाफ़ तशद्दुद को रोकने के लिए की जाएगी, और ये मुहिम 10 दिसंबर तक चलेगी। इस वक्त बताया जा रहा है कि हमारे साथ सियासी तज्ज़िया कार जो कि इंसानी हुकूक के लिए काम करते हैं अदनान आदिल हैं, जबकि हमारे साथ हैं वॉर अगेंस्ट रेप की आसिया मुनीर। तो आप दोनों मेहमान हमारे साथ रहें, सबसे पहले हम आपको इस सिलसिले में एक छोटी सी रिपोर्ट सुनाते हैं, उसके बाद बातों का सिलसिला जारी रखेंगे। आइए सुनते हैं।
ख़वातीन पर तशद्दुद के खात्मे के लिए आलमी दिन के मौके पर बुध को पाकिस्तान में मुनक्किदा तकारीब में ख़वातीन और लड़कियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मौजूदा कवानीन के मुअस्सर नफाज के अज़्म को दोहराया गया। इस्लामाबाद में गैर सरकारी तंजीम औरत फाउंडेशन और ख़वातीन अराकीन असम्बली के कॉकस के ज़ेर इंतज़ाम मुनक्किदा तकरीब में कहा गया कि पाकिस्तान में ख़वातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कायम कौमी कमीशन बराए वक़ार निस्वां और दीगर इदारों को मजबूत बनाने के साथ साथ औरतों पर तशद्दुद के खात्मे के लिए रवैयों में तब्दीली के लिए कोशिशों को तेज़ किया जाना ज़रूरी है। औरत फाउंडेशन के आदाद व शुमार के मुताबिक रवां साल जनवरी से जून तक पाकिस्तान में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के 4,308 वाक़यात रिपोर्ट हुए। रबिया हादी औरत फाउंडेशन से वाबस्ता हैं, उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू में कहा कि अगरचे मुल्क में ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के वाक़यात की रोकथाम के लिए कवानीन तो हैं, लेकिन उनके बकौल इस ज़िम्न में अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है।
जो यहाँ तक पाकिस्तान की बात है, वहाँ औरतों के खिलाफ तशद्दुद के हालात तो किसी से छुपे हुए नहीं हैं। आज भी पाकिस्तान में हमें अगर दादो शुमार के हवाले से बात करूँ तो मेरे पास जनवरी से जून तक का जो डाटा औरत फाउंडेशन कंपाइल करती है, 4,308 केसेस हैं रजिस्टर्ड, और जिसके अंदर से अगर मैं एनालिसिस आपको बताऊं तो तकरीबन हर दिन 7 औरतें कत्ल होती हैं गैरत के नाम पे, मर्डर और सुसाइड के रजिस्टर में। तो ये तो वो कैटेगरी है जो हर रोज़ होती है। इसके बाद घरेलू तशद्दुद पे हर दिन एक औरत घरेलू तशद्दुद का शिकार होती है। इसके अलावा गैंग रेप और रेप के केसेस बढ़ते ही चले जा रहे हैं, और हमारे पास इस वक्त उसको एड्रेस करने के लिए कवानीन नहीं है। जहाँ तक जिंसी तशद्दुद के हवाले से तदारुक की बात है तो हमारे कोर्ट्स में 0% कन्विक्शन है उन केसेस के हवाले से। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये बहुत अलार्मिंग है। दूसरी तरफ हमें खुशी भी होती है, हमारे बहुत से कमीशन्स बना दिए गए, नेशनल कमीशन ऑन द वुमेन, स्टेटस ऑफ वुमेन, प्रोविंशियल कमीशन्स हैं, नेशनल कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स है, वुमेन डेवलपमेंट। लेकिन अगर हम डीप डाउन जाते हैं तो वो मसाइल हमें नज़र आते हैं।
हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून की रुकने कौमी असम्बली आसिया तनोली कहती हैं कि ख़वातीन कानून साज इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करने के लिए पुरअज़्म हैं।
अभी भी हमारे पार्लियामेंट में 63-64 ख़वातीन मौजूद हैं, जो इस बात का सबूत है कि पाकिस्तानी कौम अब भी ख़वातीन की तरक्की के लिए काम कर रही हैं, और वो ख़वातीन काम करना चाहती हैं अपने इलाकों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी ख़वातीन के लिए, सिर्फ एक शहरी सूरत में नहीं, देहात में और गाँव में भी।
हकूक निस्वा के एक सरगर्म कारकुन शमून हाशमी कहते हैं कि ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे के लिए सभी को अपनी जिम्मेदारी अदा करना होगी।
लेजिस्लेटिवली तो बहुत काम हुआ है, उसको ट्रिकल डाउन इफेक्ट हम देखते हैं कि कुछ कम है, और उसका सबब यह है कि पाकिस्तान में जो शहरी तंजीमें हैं उनका रोल अभी हनूज बाकी है। पाकिस्तान में मीडिया ने इसको जिस अंदाज से, क्योंकि किसी मुल्क में भी कवानीन लोगों के समाजी रवैयों को नहीं बदल सके, और समाजी रवैयों ने हमेशा नए आने वाले कवानीन को रेजिस्ट किया है। उसके लिए एक जहन बनाना पड़ता है जो कानून को एक्सेप्ट कर ले, वो जहन साजी का अमल अनफॉर्चुनेटली कम है।
ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के आलमी दिन के मौके पर हुकूक निस्वां की तंजीमों ने यह मुतालबा भी किया कि सिन्फी बुनियाद पर तशद्दुद का निशाना बनने वाली मुतासरा औरतों और लड़कियों की ज़ाती शनाख्त को खुफिया रखा जाए और उनकी बहाली के लिए वसाइल मख्तस किए जाएँ। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
جی ہم ابتدا کرتے ہیں آسیہ منیر سے. آسیہ منیر آپ کو خوش آمدید. جی تو یہ بتائیں کہ آپ وار اگینسٹ ریپ میں کام کرتی ہیں اور خواتین جو کہ جنسی تشدد کا شکار ہوتی ہیں ان کی آپ لوگ مدد کرتی ہیں. سب سے پہلے تو یہ اس مہم کے بارے میں بتائیے کہ اس مہم میں جس میں جو عورتوں کے خلاف تشدد کیا جاتا ہے اس میں وار کس طرح سے شریک ہے؟
سب سے پہلے السلام علیکم اور آپ لوگوں نے ہمیں اس پروگرام میں شامل کیا, بہت شکریہ. اور مجھے اس پروگرام کے توسط سے اپنے جو بھی جذبات اور جو عورتوں کے خلاف جو بھی ہے میں بول بول کے ہر پلیٹ فارم پہ تھک چکی ہوں, لیکن یہ کہ پھر بھی میں نہیں تھکتی ہوں, پھر بھی بولنے کا حوصلہ رکھتی ہوں. ہمارا جو وار سے میرا جو تعلق ہے 2003 میں میں نے شروع کیا تھا, اس میں شمولیت اختیار کی تھی اور ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ شامل ہیں جس میں والنٹیئرز بھی ہیں اور تقریباً ہمارے 6 یا 7 لوگ جو ہیں ہم پرماننٹ اس جو ہے کاز پہ کام کر ہی رہے. پہلے تو ہماری شروعات اس طرح سے ہے کہ فیلڈ پہ لوگ جاتے ہیں اور نیوز پیپر سے ایم ایل اوز ہو جاتے ہیں اور کچھ ججز ہیں, پروسیکیوشنز ہیں اور جو ہے مطلب تھانے کا یہاں سے بھی ہمیں کیسز کے لیے بلایا جاتا ہے کہ آپ لوگ آئیں یہاں پر, ان کیسز پہ جو ہے کوئی ان کی سنوائی نہیں ہو رہی یا ڈیلے ہو رہا ہے یا ان کے ساتھ جو ہے مطلب بہت برا ہو رہا ہے, آپ لوگ آئیں اس کو دیکھیں اس کو ہینڈل کریں. تو میں پھر ایز اے لائر ان کے ساتھ پھر مل کے میں کام کرتی ہوں, ان کو بتاتی ہوں, ان کو بار بار کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے, انہیں بتایا جاتا ہے کہ بھائی یہ فوراً کیس ختم نہیں ہوتے لیکن آپ کے ساتھ ہم لوگ کھڑے ہیں اور جب تک آپ کو انصاف نہیں مل جاتا ہے چاہے کوئی بھی عدالت ہو, سیشن ہو, ہائی کورٹ ہو یا سپریم کورٹ ہو, جہاں آپ چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور ابھی تقریباً لاسٹ اسی سال میں ہم نے 7 کنوکشن کروائی ہیں جس کے اندر سزائے موت اور عمر قید شامل ہے.
اچھا
اور جس میں سے ابھی 4 جو ہے اپیل چل رہی ہے اس کی.
اچھا جی آپ ہمارے ساتھ رہیں, اس وقت ہم چلتے ہیں سیاسی تجزیہ کار عدنان عادل کی طرف. عدنان عادل آپ کو خوش آمدید.
جی بہت شکریہ آپ کا.
تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ عام طور پہ جب اس طرح کی مہم ہوتی ہے تو اس کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی کے دور میں ہوتی ہیں, لیکن اس دور میں یعنی پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہیں نواز شریف اس وقت وزیر اعظم ہیں, اس دور میں اس کا ہونا, اس کی وجہ آپ کیا دیکھتے ہیں, اس میں خواتین کا اپنا کتنا عمل دخل ہے؟
بات یہ ہے کہ یہ جو بھی کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس میں ایک بہت حصہ تو سول سوسائٹی تنظیموں کا ہے جنہوں نے پچھلے 10-20 سالوں میں کام کیا اور عورتوں کے حقوق کو پاکستان کے قومی ایجنڈے پر ایک ایشو کے طور پر وہ سامنے لائیں. اب کم سے کم یہ ہے کہ حکومت چاہے مسلم لیگ نواز کی ہو یا پیپلز پارٹی کی ہو, وہ قانون سازی کے ذریعے اور اعلانات کے ذریعے اور بیانات کے ذریعے خواتین کے حقوق کا نام لیتے ہیں اور کوئی نہ کچھ کرم کرتے رہتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ اس کا اثر جو ہے وہ نیچے تک ابھی نہیں جا رہا, لیکن اب جیسے آپ نے کہا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں زیادہ ہوتا تھا اور اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ان کی جو چیئرپرسن تھیں بینظیر بھٹو وہ خود بھی ایک خاتون تھیں اور ان کو خواتین سے خاص دلچسپی تھی, لیکن اب نواز شریف کی حکومت بھی ایسا کر رہی ہے. دیکھیے کہ گزشتہ سال پنجاب میں ایک قانون پاس ہوا جس کا نام ہے پنجاب فیئر ریپریزنٹیشن آف وومن ایکٹ. اس کے تحت ضروری ہے کہ جو پبلک سیکٹر کمپنیز ہیں یعنی سرکاری کمپنیاں ہیں اور صوبائی کمیٹیاں ہیں اور ٹاسک فورسز ہیں, اس میں 33% عورتوں کی نمائندگی ہو. اب وہ انہوں نے قانون پاس کیا پچھلے سال اور یہ مسلم لیگ کی حکومت نے کیا کیونکہ کچھ انٹرنیشنل پریشر بھی ہے, کچھ ہمارے ملک میں جو عورتوں کا ایکٹیویزم ہے, جو افرمیٹیو ایکشن ہے اس کا بھی نتیجہ ہے اور ان سیاستدانوں کو عورتوں کے ووٹ بھی لینا ہوتے ہیں, تو اس لیے انہیں یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پہ عمل ابھی تک جو ہے پوری طرح نہیں شروع ہو سکا اور یہ
जी बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे कानून तो बन गए, लेकिन ये भी एक खुशाइन बात है कि एक 16 दिन तक इस पर जो है वो बात होगी, और जिसकी वजह से मकसद तो ये है कि लोगों को तालीम दी जाए कि ख्वातीन के ख़िलाफ़ किस किस्म का तशद्दुद होता है। आप दोनों मेहमान हमारे साथ रहें, कुछ लोगों ने कॉल किया है, बहुत मुख्तसर उनको लेते हैं। लियाकतुल मुल्क ने कॉल किया है देर से। जी जनाब कहिए। जी कही। जी 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 कहिए।
ख्वातीन ख्वातीन का पर तशद्दुद के हवाले से तो मैं ये कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान एक इस्लामी नज़रियाती मुल्क है, और यहाँ की ख्वातीन माँ बहन बेटी बहू सास वो हमारे लिए बड़े मुकद्दस रिश्ते हैं, और अल्लाह ताला की फजल से एज़ कम्पेयर टू वेस्ट या इंडिया या ऐसे ममालिक चाइना वगैरह जापान के मुकाबले में यहाँ उनका तकद्दस अब भी बहाल है। लेकिन मैं जहाँ तक एज सोशल एक्टिविस्ट जितने भी यहाँ घरेलू झगड़े होते हैं और मैं वहाँ जाता हूँ सुलह सफाटी के लिए और उनमें इसलाह करने के लिए, तो उसमें बड़ा किरदार जो है वो सास का होता है, वो बहू का होता है, वो अवरती का होता है। जो बेचारे मर्द होते हैं वो अगर तशद्दुद पर आ जाते हैं तो वो इन्हीं की वजह से आ रहे। मेरा मतलब ये है, मैं आसिया बहन से भी ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला के फजल से आज
बहुत शुक्रिया, आपकी आपकी बात हमने सुन ली। कश्मीर चलते हैं जहाँ से अफजल कुछ कहना चाहते हैं। जी जनाब कहिए।
अस्सलाम वालेकुम मैडम।
वालेकुम सलाम।
ये मैं इसी लोग वाले से बात करना चाह रहा था, ये जो आज आर्मी दिन आप मना रहे हैं ये जरूरी है, ये जो हमारी माए बहने बेटियां हैं इनका हकूक बरकरार रखना, इन पे तशद्दुद पे कंट्रोल करना, ये क्या जरूरी नहीं है हमारे मुल्क में दहशतगर्दी से पहले?
और हमें कॉल किया है राजा जाहिद ने मुजफ्फराबाद से। जी जनाब कहिए।
अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम सलाम।
राजा जाहिद बल्ला बाड़िया मुजफ्फराबाद आजाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ। मैं ये मुख्तसर सवाल मेहमानों से पूछना चाहूंगा कि ठीक है कवानीन तो बनते रहे, इससे पहले गवर्नमेंट ने बनाए, अभी रनिंग गवर्नमेंट भी बना रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से क्या आप नहीं समझते कि पुलिस के लिए पुलिस की भी एक अलहदा फोर्स हो जो उन कवानीन को अच्छे और मौसर तरीके से इम्प्लीमेंट कराएगी? तो आप इस तरह से जितनी भी एनजीओ है गवर्नमेंट पर ये प्रेशर क्यों नहीं डालती कि पुलिस फोर्स अलग बनाई जाए जो वुमेन के राइट्स का तहफ़ करे?
अच्छा शुक्रिया। आसिया मुनीर, आप जानती हैं कि अभी तक पाकिस्तान जैसे मुल्क में ख्वातीन जो हैं वो मुआशी तौर पे आज़ाद नहीं समझी जाती, इसकी वजह से आप क्या समझती हैं? क्योंकि वर्किंग वेमेन जो हैं वो कम हैं, आप के इल्म है कि मुआशी तौर पर आज़ाद होने से बाख्तियार भी होती हैं ख्वातीन, इस सिलसिले में आप क्या देखती हैं, क्या कमज़ोरियाँ हैं पाकिस्तान में?
सबसे पहले तो एजुकेशन है, एजुकेशन इतनी होती नहीं है कि वो अगर बाइज्जत बावकार जो है अपनी कोई जॉब हासिल कर लें, वो ज़्यादा इन हमारे पास जो केसेस आते हैं वो लोअर तबके से ही होते हैं, जिनमें जो है छोटे छोटे घर होते हैं, करीब करीब घर होते हैं, तो वो उनकी आवाज़ें आपस में उनको सुनाई होती हैं कि भाई इनके घर में ये मसला हो गया या इस बच्ची के साथ ये तशद्दुद हुआ, ये जिस्मानी तशद्दुद हुआ, ये इसका रेप हो गया, जो भी है उनमें इतनी मतलब एबिलिटी या इतनी एजुकेशन नहीं होती कि वो बाईस जगह जाके वो जॉब करे या कुछ करे, वो मेड का काम करेंगी कुछ का कोई और इस तरह से काम करेंगी। तो मैं ये समझती हूँ सबसे ज़्यादा जो उनकी जो ये एक तरह से ज़िंदगी तबाह होती है कुछ जो भी होता है, और उसमें एजुकेशन का हाथ है, उन्हें किसी चीज़ की अवेयरनेस नहीं होती है, उन्हें वो देखते आ रहे होते हैं घर के अंदर जो माहौल होता है वही आगे जो है वो उनके मेल वो फॉलो कर रहे होते हैं जो कि औरतों पे तशद्दुद का बाइस बनते हैं।
जी, और आपके इल्म में है कि एजुकेशन तो दोनों मर्दों और औरतों के लिए जरूरी है,
औरत जरूरी होता
बिल्कुल।
है अवेयरनेस भी हो, फैमिली भी उन्हें जो है वो गाइड करे।
बिल्कुल सही है। एक मिनट हमारे साथ रहें, एक कॉलर हैं हंजा से, करीम ने कॉल किया है। जी जनाब कहिए।
अस्सलाम वालेकुम मैडम।
वालेकुम सलाम।
मेरी गुजारिश ये है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स इश्यूज हैं ये ख्वातीन और सोसाइटी के बारे में, और जो आजकल जो एजुकेशन के नाम पे जो कुछ यहाँ हो रहा है, तो एजुकेशन ठीक है, इट्स ओके कि भाई एजुकेशन हासिल करके लोगों को अवेयरनेस आती है, आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो एजुकेशन दी जा रही है या उनको मिल रही है तो उस एजुकेशन के बाद उनको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही है, یہاں گاؤں کے اندر جو ہے نا بہت سارے خواتین ایسی ہیں جنہوں نے ایم اے کیا ہوا ہے, نہ وہ گاؤں کا کام, گاؤں کے اندر مثال تھوڑی بہت زمینداری ہوتی ہے, مویشی وغیرہ یا جو بھی انڈیجنس جو ہمارے پیشے ہیں, تو ان سے بھی وہ لوگ, کیونکہ ہم نے ایجوکیشن کیا ہے تو لہٰذا ہم یہ لوگ.
جی ہاں, آپ نے بڑی اہم بات کی, کیونکہ ظاہر ہے پورا معاشرہ اس طرح کا ہے کہ عورتیں اگر پڑھ لکھ بھی جائیں تب بھی انہیں ملازمت نہیں ملتی. اس 16 دن میں اس کے حوالے سے بھی بات کی جائے گی. ایک اور کالر کو لیتے ہیں, احمد خان نے کال کیا ہے. جی کہاں سے کال کریں, کیا کہنا چاہیں گے احمد خان؟
امن جان خٹک بول رہا ہوں کریک سے.
اچھا اچھا اچھا, جی جی کہیے.
بات یہ ہے کہ جو فیمل کا رائٹس کا مسئلہ ہے, اس کے بارے میں میں یہ کہوں گا کہ ان کو زیادہ سے زیادہ ایجوکیٹ کیا جائے. مطلب سوسائٹی کو چاہیے کہ ان خواتین کے ایجوکیشن کا اہتمام کیا جائے, تبھی سارا مسئلہ حل ہوگا.
جی جی, یہی بات ہم نے کی. اور غلام حسین نے کال کیا ہے راول پنڈی سے. جی جناب کہیے.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بات یہ ہے کہ خواتین کی جو ان سے شکتی ہے, ان کو اسلام نے
ایک اپنے حسن کو پردے میں نمائش نہ کرے, لوگوں کے سامنے نمائش کر کے برانگیختہ نہ کرے, بلکہ اس کو پردے میں چھپا کے اپنے باعزت رقے سے رکھے تو ان کی عزت احترام ہوتی ہے. جب وہ اپنے حسن کو نمائش کریں گے.
اچھا, میرا خیال ہے کہ کافی تعلیم کی ضرورت ہے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس وقت ہمیں فون کر رہے ہیں, لیکن ہم اس موضوع کو یقیناً دوبارہ بھی لیں گے. اس موڑ پہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آسیہ منیر کا جو وار اگینسٹ ریپ کے لیے کام کرتی ہیں, کراچی میں ہوتی ہیں. عدنان عادل, آپ ہمارے ساتھ رہیں. اس وقت ایک آئی ڈی بریک لیتے ہیں.
واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان؟ جانیے facebook.com/voaurdu یا twitter.com/urduvoa. ہم سے رابطہ کیجیے urduvoa.com پر. واٹس اپ پاکستان, کیا سین ہے پاکستان؟ urduvoa.com.
میری اور آپ کی دنیا تبدیل ہو رہی ہے. ٹاپ اسٹوری ایکسکلوسیو, سب سے پہلے, سب سے آگے, لیکن سب میں میں اور آپ کہاں ہیں؟ جاننے کے لیے رہیے میرے ساتھ, میں ہوں تابندہ نے.
جی, آپ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے جہاں رنگ سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں, اور ہم اپنے آخری موضوع کی طرف آتے ہیں. موضوع یہ ہے کہ ایک پاکستانی قیدی جو معذور ہے, اس کی پھانسی وقتی طور پہ روک لی گئی ہے. اس سلسلے میں اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے ساتھ سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف ہیں, جبکہ پچھلے سیگمنٹ سے عدنان عادل ہیں جو سیاسی تجزیہ کار ہیں. محمود اشرف, آپ کو خوش آمدید. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ یہ جو ہے قیدی, اس کی پھانسی جو صدر نے روکی ہے, یہ کیا صرف 2 مہینوں کے لیے روکی ہے, یا آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل ختم ہو گئی ہے یہ اور ان کو پھانسی نہیں دی جائے گی؟
جو بظاہر حکم ہے وہ تو یہی ہے کہ اس کی پھانسی پر عمل درآمد 2 ماہ کے لیے صدر ممنون حسین نے روک دیا ہے. لیکن جہاں تک آپ کے سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ یہ مشکل رک گئی, یہ مشکل نہیں رکی. پاکستان میں جو قوانین ہیں وہ عالمی قوانین سے کچھ زیادہ مختلف نہیں ہیں. پاکستان میں بھی جس وقت پھانسی کسی شخص کو دی جائے, اگر وہ وقتی طور پر کسی بیماری میں مبتلا ہے, تو پھر تو اس کو اس بیماری سے تندرستی تک اس کی سزا روکی جا سکتی ہے. لیکن اگر وہ کسی معذوری میں مبتلا ہے, تو پھر اس کی سزا روکنے کا کوئی قانون موجود نہیں ہے. ہم یہ اگر اس بات کو دیکھیں تو جو امریکہ کے بھی قوانین ہیں اس میں بھی اس سلسلے میں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. تو امریکہ کی جو चार्ल्स एस टेम्पर 1993 में ये डेथ दी गई, रिचमंड के गवर्नर ने, वर्जीनिया के गवर्नर ने दिया रिचमंड में, तो उसमें भी उसको व्हील चेयर पे ले जाया गया क्योंकि उसका भी इसी तरह ही जो निचला धड़ है वो पैरालिसिस का शिकार था। इसी तरह अमेरिका में आप ये देखिए कि जो एक कानून 2002 में बना कि किसी ज़हनी मजदूर को फांसी नहीं दी जाएगी, वो तकरीबन कोई 16 या 18 रियासतों में हुआ, उसके बावजूद भी 7/1/2014 में अस्करी अब्दुल्ला मोहम्मद को सजाए मौत हुई, उसको भी बहुत सी बीमारियां ज़हनी तौर पे थी। लेकिन अब अमेरिकन कोर्ट्स भी मजबूर हो गई है कि वो रिविजिट करें क्योंकि इसका कोई पैमाना नहीं है ज़हनी मजदूरी का भी। तो कानून में इस चीज की गुंजाइश तो है कि ज़हनी मजदूर को किसी तरीके से बचाया जा सके, लेकिन जिस्मानी तौर पर मजदूरी जो है वो अभी तक कानून, किसी भी दुनिया के किसी कानून में भी ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है कि जिसकी वजह से उसकी फांसी रोकी जाए। और वैसे भी अगर इस तरह जिस्मानी मजदूरी को वजह बनाया जाएगा तो फिर शायद कत्ल करने के बाद बहुत से जो कातिल हैं वो अपने आप को कुछ ना कुछ तौर पर माजूर कर लिया करेंगे ताकि वो सजा से बच सके।
बहुत दिलचस्प, आप हमारे साथ रहें, आप हमारे साथ रहें। अदनान आदिल, हमारे पास हालांकि वक्त बहुत कम है लेकिन आप इस पर ज़रा तबसरा करें। आपके इल्म में है कि कोई तकरीबन 8,000 लोग हैं जो इस वक्त फांसी घाट पर हैं, ये बताइए पाकिस्तान सरकार के लिए कितना मुमकिन है कि ऐसे लोगों को स्क्रीन किया जाए? क्योंकि हमारी इतलात के मुताबिक उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि जो दहशतगर्द भी नहीं हैं बल्कि उन्होंने और तरह की जो हैं वो जुर्म किए हैं।
देखिए, पाकिस्तान पे आलमी दबाव है, खासतौर से यूरोपीय यूनियन का, कि सजाए मौत पर अमल दरामद रोका जाए कम से कम। वैसे तो वो कहते हैं कि सजाए मौत को मनसूख किया जाए, और अगर पाकिस्तान ऐसा नहीं करता तो उसको बहुत से जो तजारती फवायद यूरोपीय यूनियन से मिल रहे हैं वो उससे महरूम हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल प्रेशर है, मुल्क के अंदर भी इंसानी हकूक की तंजीमें ये मुतालबा करती आई हैं कि जो सजाए मौत का कानून है इसको ख़त्म किया जाए। लेकिन बदकस्मती ये हुई कि जो हमारे यहाँ दहशतगर्दी की बहुत ज़्यादा लहर आ गई, तो उसमें जो पब्लिक ओपिनियन है, राय आमा जो है, वो सजाए मौत के हक में चली गई। तो अब ये मुझे नहीं लगता कि फौरी तौर पर इस बात का कोई इम्कान है कि हुकूमत जो है वो लोगों को सजाए मौत पर अमल करवाना छोड़ सके, क्योंकि इस वक्त जो जिस किस्म का यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, आम तौर से जो लोगों का प्रेशर है वो यही है कि लोगों को सजाए मौत का जो कानून है और जो लोगों को सजाए मौत हो चुकी है उस पर अमल दरामद कराया
जी। महमूद अशरफ, आप बताएं कि अब तक कोई 300 फांसियां हुई हैं, आप बताइए ये जिसको कहते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी कि इनकी जो है छांटी किस हद तक हुई है इन लोगों की जिनको फांसियां दी गई हैं?
देखिए, छांटी का मतलब अगर आप ये लेती हैं कि उनमें हेनियस ऑफेंसेस में या टेररिज्म के केसेस में कौन थे कन्विक्ट और आम केसेस में कौन थे, तो इसमें कोई किसी किस्म की तख्सीस नहीं है। जिन्होंने जाति दुश्मनी की बिना पर भी कत्ल किए या डकैती करते हुए कत्ल किए या जना विद मर्डर हुआ, उन सबको भी इनवेरिएबली ये फांसियां दी जा रही हैं। पाकिस्तान में मुआशरा जो है वो और इस्लाम भी ये रिक्वायर करता है कि अगर किसी ने कत्ल किया है तो उसकी सजा उसको खून का बदला खून है। अगर वो हुकूमत बुलाती है तो इससे अमन कायम होता है, नहीं तो ये कत्लो गारतगरी बढ़ती चली जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ठीक कर रही है कि इनवेरिएबली बजाय इसके कि कोई क्लासिफिकेशन करे कि हम सिर्फ इस कैटेगरी के मुजरमों को सजा मौत देंगे, वो जो भी जिस तरह रॉ है प्रिजनर्स की, कंडेम प्रिजनर्स की, उनको उस तरह सजा मौत दी जा रही है।
और ये जो 8,000 की तादाद है जो इस वक्त फांसी घाट पे हैं, आपके ख्याल में ये जायज़ है?
ये देखिए, जो कंडेम प्रिजनर है उसको मुल्क की तमाम अदालतों ने फैसले में सजाए मौत बरकरार रखी होती है। अगर हम अपने कानून को देखें जो न सिर्फ लॉ ऑफ लैंड बल्कि हमारा जो मजहब है उसको भी मद्देनजर रखता है, तो जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक उनको सजा दे देती है तो फिर इसके जायज या नाजायज होने का कोई मेरा ख्याल क्वेश्चन नहीं होता। ये उनके लिए तो नाजायज हो सकता है जो अपने मुख्तलिफ ہمارے
جی محمود اشرف ہمارے پروگرام کا وقت بالکل ختم ہوا. بہت زیادہ بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. ہمارے ساتھ تھے سپریم کورٹ کے وکیل محمود اشرف اور سیاسی تجزیہ کار عدنان عادل. بہت شکریہ اور خدا حافظ. اس کے بعد جو ہیں ہم پروگرام کو سمیٹتے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں نفیسہ ہود بھائی. سننے کا شکریہ اور خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی تھی.